समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और ये है न्यूज मैगजीन आज सवेरे। आज की संघ के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
नमस्कार देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Listeners, you are listening and tuned to the ever-exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we'll bring you the latest updates from the world of national, international news. In fact, Devendra, it's going to be a complete package for our listeners for the next 30 minutes, where besides news, we shall also share fascinating historical insights and also talk about certain celebrities who make this day so, so special. And
और हम बात मौसम की भी करते हैं, जो इस समय लोगों के लिए कंसर्न का विषय बना हुआ है।
Absolutely.
कई जगहों पर शीतलहर है तो कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है।
बिल्कुल, so diverse is our country and similarly diverse are the weather conditions here, Devendra.
और उसी तरह से diverse है हमारा आज का प्रोग्राम जैसे रोज होता है।
Absolutely. And listeners, opportunities are just like sunrises. If you take too long, you just might miss the beauty of the sunshine.
जी, तो
एंड देवेंद्र, आई थिंक वी आर ऑल्सो गिविंग अ रिमाइंडर टू आर लिसनर्स दैट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ट्यून इन टू आकाशवाणी एंड एंजॉय आज सवेरे फॉर द नेक्स्ट 29 मिनट्स एग्जैक्टली। लेट्स बिगिन द प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम देवेंद्र।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले से जुड़ी 7000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं प्रयागराज में आवागमन सुविधाजनक बढ़ाने और संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी गंगा में गैर उपचारित दूषित जल के प्रवाह रोकने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री दिन में लगभग 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो पावन तट संगम तट पर पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वे महाकुंभ के दर्शकों की मदद के लिए तैयार किए गए सहायक चैट बॉट का भी शुभारंभ करेंगे। कुंभ मेला अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा, तो ये बहुप्रतीक्षित मेला है सरबजीत, और बहुत लंबे इंतजार लंबी प्रतीक्षा के बाद ये संयोग आता है जब महाकुंभ का ये संयोग बनता है। और इस दौरान देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, तो उनकी सुविधा के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।
बिल्कुल, इट्स इंडीड अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज स्टोरी, द लोकसभा विल बिगिन अ टू डे डिबेट टुडे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 75th ईयर ऑफ इट्स अडॉप्शन इन द कंट्री। As per the listed agenda of the Lok Sabha, there will be a special discussion on the 75th anniversary of adoption of the Constitution of India. The discussions will begin after the question hour. Defence Minister Rajnath Singh will initiate the debate on the Constitution in the Lok Sabha. Prime Minister Narendra Modi is expected to reply to the two-day debate on the Constitution in the Lok Sabha tomorrow.
जी, और ये वही संविधान है जिसके अंतर्गत हमारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक शासन चलता है और व्यवस्था चलती है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सभी एक समान होते हैं इसी संविधान की छत्रछाया में।
जी,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित न करने का भी आदेश जारी किया है।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज यूएई काउंटरपार्ट शेख अब्दुल्ला बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान विल को चेयर 15th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। द टू लीडर्स को चेयर द 4th इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। In a social media post, Dr. Jaishankar said the strategic dialogue is an effective platform that helps the leadership guidance into reality. He said there was very productive exchange on promising domains and key interests. UAE Deputy Prime Minister and Foreign Minister arrived in New Delhi on Wednesday night to take part in the 4th strategic dialogue and the 15th India-UAE Joint Commission meeting.
देश में खुदरा मुद्रा स्फीति में इस वर्ष नवंबर महीने में कमी आई है. पिछले महीने की तुलना में ये 6.2% से घटकर 5.4% पर आ गई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा स्फीति दर 5.95% और शहरी क्षेत्रों में 4.83% रही है.
And with so much of solemn and tribute in our hearts and eyes, Devendra, the nation today pays tribute to the security personnel and victims who lost their lives defending the parliament during a terrorist attack on this very day in the year 2001. Vice President and Chairman Rajya Sabha Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Ministers, Members of Parliament will pay floral tributes to the martyrs at the Parliament House later in the day today.
Right. और इसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात भी करेंगे.
जी.
और इंडियन लाइट टैंक ने 4,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अलग अलग रेंज में सटीक तरीके से कई राउंड फायरिंग कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रक्षा मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस टैंक को अधिक ऊंचाई वाले सामरिक क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 टन वर्ग के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के रूप में डिजाइन किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा इस टैंक की एयर लिफ्ट क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया, जिससे दूरदराज के उन क्षेत्रों में इस टैंक को तत्काल तैनात करने में मदद मिलेगी जहां सड़क या रेल के माध्यम से इसे पहुंचाना मुश्किल है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि आंतरिक प्रदर्शन परीक्षणों के इन दो चरणों के साथ ILT यानी इंडियन लाइट टैंक को उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए पेश किए जाने से पहले कुछ और परीक्षणों से गुजरना होगा.
And Devendra, as you said in the beginning of the program that you're talking about the weather conditions, and now winters have finally and properly set in. India Meteorological Department has forecast cold wave conditions over northwest and central India during the next 2 to 3 days, according to IMD. Cold wave conditions are likely to prevail over Rajasthan and Chhattisgarh today and over Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh and Madhya Pradesh till the 15th of this month. In East India, these conditions will persist over Gangetic, West Bengal, Bihar and Jharkhand during the next 2 days. Dense fog conditions are very likely to prevail over late night and early morning hours in pockets of sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Bihar until today, and over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till the 17th of this month. And for our listeners from Delhi NCR, a cold wave is expected here along with smog and shallow to moderate fog during the morning and night hours until the 15th of this month.
जी, और जिस सर्दी की प्रतीक्षा लंबे समय से लोग कर रहे थे,
जी,
सर्दी नहीं पड़ रही है. और सर्दियों में सर्दी का मजा तभी है जब सर्दी टेम्परेचर गिरे और कोल्ड वेव जैसी कंडीशंस बने.
हालांकि माइंड यू देवेंद्र, यू नीड टू टेक लॉट ऑफ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एट दिस टाइम.
जी, और कई लोग ऐसे डिप्राइव्ड लोग हैं जिनको इस तरह के मौसम से बहुत चुनौतियां भी उनके सामने उनके जीवन के सामने पैदा हो जाती हैं. तो हमें उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जिनके पास सक्षम है.
श्योर, टाइम टू रीच आउट एंड थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ.
राइट. अगली खबर बहुत अच्छी है. भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है. उन्होंने सिंगापुर में खेली गई प्रतियोगिता में वर्तमान विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिजेन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब जीता. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं.
एंड देवेंद्र, फ्रॉम द फील्ड ऑफ चेस टू द ग्राउंड्स ऑफ हॉकी, इंडिया डिफीटेड थाईलैंड 9-0 in their fourth Pool A match at the Women's Junior Asia Cup in Muscat, Oman last night. With this win, India progressed into the semi-finals of the event and also sealed in the FIA Junior World Cup 2025 to be held in Chile. India found the opening goal early in the second quarter as captain Jyoti Singh provided an assist to vice captain Sakshi Rana, whose powerful shot from distance found the net. For India, Deepika scored 4 goals while Kanika Suraj registered the hat-trick during the Indian domination.
तो देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों, कुछ अहम खबरों की चर्चा जानकारी आपसे साझा कर ली हमने, और अब आगे बढ़ते हैं महानगरों के मौसम का या महानगरों की खबरों का हाल जानते हैं। तो सबसे पहले खबरें जानेंगे, उसके बाद महानगरों के मौसम की बात करेंगे। तो सरबजीत, बताएं आप चेन्नई और हैदराबाद, बेंगलुरु से क्या खबरें हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
यस देवेंद्र, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द न्यू जर्सी इंडिया कमीशन इन कंजंक्शन विद Choose New Jersey facilitated the signing of an agreement between Rutgers, the State University of New Jersey, and Tamil Nadu Technology Hub. The agreement will foster innovation in the deep technology sector and create collaboration opportunities for both institutions, including research and development, academic research and development, academic research and startup entrepreneurship. The registration department's revenue for the financial year 2024-25 reached 14,525 crores till present, marking an increase of 1,891 crore compared to 12,634 crores in the same period last year. Minister for Commercial Taxes and Registration P. Murthy chaired a review meeting at the Integrated Commercial Taxes and Registration Department. The minister commended department officials for achieving substantial revenue growth and asked them to continue their efforts to meet the year-end targets. And Devendra, what's the buzz from Delhi today?
जी, दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिला सम्मान योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत राजधानी में रहने वाली 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को सरकार मासिक तौर पर एक स्थायी राशि प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल राजधानी के द्वारका स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह और 27वें स्थापना दिवस के समापन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने विश्वविद्यालय की रंगभूमि, स्वास्थ्य केंद्र और विश्वविद्यालय हब और अतिथि गृह का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने एक रजत जयंती सिक्का, दो पुस्तकें और एक नया लोगो और विश्वविद्यालय का विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। उपराज्यपाल ने विश्वविद्यालय की रोबोटिक्स लैब और टीवी स्टूडियो का भी डिजिटल उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी, सभी जिला चुनाव अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आयोग ने विशेष पुनर्निरीक्षण 2025 की प्रगति और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बादली विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित, बल्ली मारान से हारून यूसुफ, वजीरपुर से रागिनी नायक, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से अनिल भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। और इंडिया गेट पर 22वां दिव्य कला मेला कल से शुरू हो गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत के दिव्यांग कारीगरों, उद्यमियों और कलाकारों की प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन कर रहा है। मेले में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले में जरूर पहुंचिए और उन दिव्यांग उद्यमियों या कलाकारों को, कारीगरों को प्रोत्साहित कीजिए जिन्होंने कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की तरह सक्षमता न होने के बावजूद अपनी रचनात्मकता को, अपनी कला को उन उत्पादों पर उकेरा है, दिखाया है।
And listeners, moving on further, let's share the news from Bengaluru. Devendra, there's a happy news from this part of our country, and that is that there has been a significant decline in the tuberculosis cases from this part. And similarly, TB-related deaths have decreased from 5,115 in the previous year to 3,711 this year. And the data shared by the Ministry of Health and Family Welfare through the Nikshay portal highlights the impact of targeted initiatives in combating TB. And of course, the experts are giving the credits to programs like National TB Elimination Program, and the Nikshay Poshan Yojana, which have indeed enhanced patient identification. These programs also provide nutritional support and, of course, you know, so important in any kind of medical setup, that is the consistent follow-up care. To rule out any disease, Devendra, what is very important is the follow-up care to bring, you know, to logically conclude the good thought process that has been initiated by the government or by any other organization.
जी, और सरकार ने क्योंकि टीबी को पूरी तरह से देश से समाप्त करने का प्रण लिया है
जी,
तो इसमें लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है. और जो जैसा कि आपने कहा कि वेरी गुड केयर ऑफ themselves, अगर कोई प्रभावित है तो उसका उसकी देखभाल सही तरीके से और दवाओं की जो पूरी डोज है उसको समय पर और नियम से लेना जरूरी है.
आई थिंक देवेंद्र, इट्स ऑल अबाउट यू नो अ कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल हु वर्क हैंड इन हैंड एंड गो इन टुगेदर. मूविंग ऑन टू द बस फ्रॉम मुंबई, देवेंद्र
जी, महाराष्ट्र सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई पहल कर रही है. निवेशकों को उनके प्रस्तावों के लिए सलाह और सहायता देने के लिए कंट्री डेस्क नामक एक विशेष डेस्क की स्थापना की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नए निवेश के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय निवेश व्यापार के साथ तालमेल बनाए रखने वाली नीति बनाने पर जोर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार और प्रमुख उद्योग समूहों के बीच औद्योगिक समन्वय को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. महाराष्ट्र में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए संभावित निवेशकों के साथ संवाद भी स्थापित किया जा रहा है. और महाराष्ट्र डाक मंडल ने राज्य स्तरीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी महापेक्स 2025 के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है. डाक टिकट संग्रह की कला का जश्न मनाने वाली ये प्रदर्शनी 22 से 25 जनवरी 2025 के बीच प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में आयोजित की जाएगी. महापेक्स 2025 में कई तरह की प्रदर्शनियों और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. प्रविष्टि फॉर्म और अधिक जानकारी के लिए www.mahapex2025.com पर आप लॉग ऑन कर सकते हैं.
And Devendra, I'm sure you'll agree with me that roads form a very important part of our infrastructure.
Definitely.
So Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has urged Union Minister for Road Transport and National Highways Nitin Gadkari to grant technical and financial clearances for the 159-kilometer northern part of the regional ring road RRR. The Chief Minister led a delegation that met with the Union Minister in Delhi last night. Mr. Reddy appealed to Mr. Gadkari to construct a four-lane elevated corridor in the Amrabad forest area and sanction funds for the same during the current financial year. And Devendra, have you brought some news from Kolkata for our listeners?
जी. भारत में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण में आईआईटी खड़गपुर की पांच टीमों ने जीत हासिल की है. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कल वर्चुअल माध्यम से विजेताओं के नामों की घोषणा की. प्रत्येक विजेता को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सौंपी गई. पूरे भारत से 17 टीमों को विजेता चुना गया. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले सॉफ्टवेयर संस्करण का कल दूसरा दिन था. इस आयोजन में कुल 35 टीमों ने हिस्सा लिया. 36 घंटे तक चली इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी अपनी टीमों को दी गई समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला. और अब बात करते हैं महानगरों के मौसम की. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जैसा कि अभी सरबजीत ने बताया कि दिल्ली में भी शीतलहर का प्रभाव रहेगा 15 दिसंबर तक, तो दिल्ली में शीतलहर जारी है. अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. और मुंबई में आसमान साफ रहेगा. बात करें तापमान की तो न्यूनतम 17 अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. कोलकाता में भी साफ आसमान के बीच में 13 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किए जाने की संभावना है. सरबजीत, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा बताएं?
Yes, Devendra, Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is also expected to have a generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature 19 degrees, maximum around 25 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 14 degrees and a maximum of 28 degrees. And listeners, after this update on weather, time now for a report on the sports field फ्रॉम चिराग।
इस रिपोर्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे और हम चलते हैं इतिहास की तरफ, इतिहास में दर्ज आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज 13 दिसंबर है और आज के दिन कई बड़ी घटनाएं दुनिया भर में, भारत सहित दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घटी, जिनका जिक्र आपके लिए जरूरी है। आज ही के दिन 1772 में नारायण राव सतारा के पेशवा बने थे। 1920 में नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया था और वर्ष 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आज ही के दिन उद्घाटन किया गया था।
ऑन दिस डे इन द ईयर 1642 डच एक्सप्लोरर एबिल तस्मैन डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड एंड अगेन ऑन दिस डे इन द ईयर 1950 हॉलीवुड आइकन जेम्स डीन बिगैन हिज करियर बाय अपीयरिंग इन अ लीडिंग ब्रांड कमर्शियल।
और 1955 में भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया था।
1961 ऑन दिस डे इंडियन क्रिकेट लेजेंड मंसूर अली खान पटौदी मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड एंड स्कोर्ड अ मैमथ 104 रन्स। 1999 द रेलवेज अनाउंस्ड कंसेशंस फॉर सीनियर सिटीजन्स स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10 एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस कुड अवेल ऑफ दीज कंसेशंस। In the year 2000 on this day, Vijay Samuel Hazare, former Indian cricket captain, became the first recipient of the Castor Oil Lifetime Achievement Award.
और वर्ष 2001 में आज ही के दिन भारत में हुए एक आतंकी हमले से दुनिया हैरान हो गई थी। कड़ाके की ठंड देश के कई राज्यों में पड़ रही थी, संसद सत्र चल रहा था, सबकी निगाहें संसद पर थीं, लेकिन 11 बजे एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और ये खबर थी भारत की संसद पर आतंकवादी हमले की। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध हो गया था। सफेद रंग की एम्बेसडर कार में सवार आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकी अपवित्र कर पाते उससे पहले ही भारत की सुरक्षा बलों के मुस्तैद जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया था और भारत की लोकतंत्र की रक्षा में उन्होंने जो प्रतिज्ञा अपनी सेवा शुरू करने के समय ली थी उसका प्रमाण, उसका जीता जागता प्रमाण दिया था।
Absolutely, indeed, Devendra. Many, many tributes to our great martyrs and soldiers. And before we move on to the last segment of our program, listeners, we'd like to apologize that due to some technical reasons, we shall not be able to bring the sports roundup to you in this edition of Aaj Savere. Right. Moving on to our last segment, Devendra.
Ji, yaad karte hain unwahan लोगों को जिनकी आज जन्म तिथि या जयंती या पुण्यतिथि है। और इस क्रम में हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की शुरुआत करने वालों में जिन लेखकों का नाम लिया जाता है उनमें से एक नाम है इला चंद्र जोशी का, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। जोशी जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा काव्य रचना से शुरू की थी। पर्वतीय जीवन, विशेषकर वनस्पतियों से आच्छादित अल्मोड़ा और उसके आसपास के पर्वत शिखरों ने और हिमालय के जलप्रपातों एवं घाटियों ने, झीलों और नदियों ने इनकी काव्यात्मक संवेदना को सदैव जगा कर रखा। उत्तरांचल में जन्मे होने के कारण वहां के प्राकृतिक वातावरण का इनके चिंतन पर, इनके लेखन पर गहरा प्रभाव रहा। अध्ययन में रुचि रखने वाले इलाचंद्र जोशी ने चिंतन पर बहुत इलाचंद्र जोशी ने छोटी उम्र में ही भारतीय महाकाव्यों के साथ साथ विदेशों के प्रमुख कवियों और उपन्यासकारों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी तथा अज्ञेय ने हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दिया था। ये मूलतः मानव मनोविज्ञान के लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मन के भीतर के संसार की ओर मोड़ा था। इलाचंद्र जोशी के अधिकतम उपन्यास उनके पात्रों के मनोलोक की गाथाएं हैं जिनका अपने बाहरी संसार से टकराव होता है। कभी मौका मिले तो इन्हें पढ़िएगा जरूर
जी।
और फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक अल बेरूनी की भी आज पुण्यतिथि है। अफगानिस्तान के रबीवा में अल बेरूनी का जन्म 13 दिसंबर 1017 को ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म को महमूद गजनवी ने जीत लिया था। अल बेरूनी को महमूद गजनवी के सामने कैदी के रूप में लाया गया, लेकिन अल बेरूनी की विद्वता से जब महमूद गजनवी प्रभावित हुआ तो उसने अपने राज्य का राज्य ज्योतिष नियुक्त कर दिया इन्हें। महमूद गजनवी की सेना के साथ अल बेरूनी भारत आए और कई वर्षों तक पंजाब में रहे। भारत में रहकर उन्होंने संस्कृत पढ़ा तथा हिंदू दर्शन और दूसरे शास्त्रों का भी गहराई से अध्ययन किया। अल-बेरूनी ने कुल 14 पुस्तकें लिखी, जिसमें तहरीके हिंद यानी भारत की खोज सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, चरित्र, आचार व्यवहार, परंपराओं और वैज्ञानिक ज्ञान का विशद वर्णन किया गया है। इसमें मुसलमानों के आक्रमण के पहले के भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रामाणिक और अमूल्य विवरण मिलता है।
And listeners, we are paying tributes to the great legendary actress Smita Patel. Today is her death anniversary. Regarded among the finest and greatest actresses in the history of Indian cinema, Smita Patel was known for her unconventional portrayal of the strong and independent woman.
स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, मां समाज सेविका थीं। स्मिता पाटिल ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मराठी टेलीविजन में समाचार वाचिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और यहीं उनकी मुलाकात हुई जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से। श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म चरणदास चोर में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू होता है। 1977 स्मिता पाटिल के सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुईं।
And listeners, her voice was so strong and we didn't want to miss out on that. So we have a great dialogue delivered by Smita Patil from the film Vakil Ho To Aisa.
तुमने अपने बचाव के लिए वकील करने से इनकार क्यों किया?
रजनी, मैं ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। सच्चाई है कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने ये चाहता कि मेरी जिंदगी के लिए कोई भी लड़े।
प्रभात, मैं कोई नहीं हूँ, मैं रजनी हूँ। तुम्हारी जिंदगी और तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी, तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। आई विल फाइट फॉर योर लाइफ।
फिल्म के निर्माण के लिए, जिस फिल्म का जिक्र मैंने किया सरबजीत, भूमिका और मंथन, उसके निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपए फिल्म निर्माताओं को दिए थे। कितनी बड़ी बात थी।
बिल्कुल।
और क्योंकि एक विषय था, एक मैसेज था, समाज के लिए था। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिस्ती औरत की संघर्ष की कहानी बयां करती है। ये फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया एक गाना हम आपको सुनवाते हैं।
हमने ये सनम को खत लिखा, हमने ये सनम को खत लिखा, खत में लिखा।
आज डी वेंकटेश का भी जन्मदिन है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
बिल्कुल। एंड देवेंद्र, वी ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल नंबर विच वॉज पिक्चराइज्ड ऑन डी वेंकटेश।
जाने जा, जाने जा, बिन तेरे क्या जीना, सुने हैं नजारे, दिल तुझको पुकारे।
Listeners, today is also the birthday of the great actress Mahalakshmi, and she did an awesome, she did an awesome work in the movie called Julie.
जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को।
Listeners, another great personality who has birthday today is Meghna Gulzar, the great director, and we have this loving, touching number from the film Razi.
Ungli pakad ke tune chalna sikhaya tha na, dehliz unchi hai ye paar kara de, baba main teri malika, tukda hu tere dil ka, ek baar phir se dehliz paar kara de.
मुड़के ना देखो दिलबरों, दिलबरों, मुड़के ना देखो दिलबरों, मुड़के ना देखो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप मुड़ के जरूर जुड़ते रहें आकाशवाणी के साथ, क्योंकि आज सवेरे के बाद हम आपके लिए ला रहे हैं समाचार प्रभात, फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. देवेंद्र, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो.
जी बिल्कुल, तो दीजिए फिलहाल अनुमति कार्यक्रम आज सवेरे न्यूज मैगजीन आज सवेरे समाप्त करने की देवेंद्र और सरबजीत को. लेकिन आप जैसा कि सरबजीत ने कहा, लगातार मुड़ मुड़ के देखते रहिए आकाशवाणी की ओर. दीजिए अनुमति, नमस्कार.